أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، تفسیر سورہ توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہ اس سورہ مبارکہ کی ایک شان نزول ہے، جو کہ اس کی تفسیر کو سمجھنے کے بارے میں بھی مدد دیتی ہے کہ یہودی علماء کا، یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے ایک سوال پیش کیا کہ اے محمد، اپنے رب کا نسب بیان کر. کہ انسب لنا ربا کا، کہ اپنے رب کا نسب بیان کر کہ تیرے رب کا نسب کیا ہے. یعنی انہوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جن کا دعویٰ تھا کہ وہ آخری نبی ہیں اور ساری آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھنے والے ہیں اور ساری آسمانی کتابوں اور نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں اور ساری آسمانی کتابوں اور جو صحف انبیاء کی تعلیمات تھیں ان کے لیے مکمل کرنے والے ہیں، کہ ان کے بیان کو زیادہ واضح اور ان کے اندر جو تحریفات تھیں اس کو دور کر کے، کہ اصل وہ پیغام الہی کے حقیقت پیغام الہی کے حقیقی پیغام الہی کے پہنچانے والے ہیں، کہ ان سے یہ سوال کیا گیا یہودیوں نے آ کے کہ انسب لنا ربا کا، کہ اپنے رب کا نسب بیان کر، کہ اپنے رب کے بارے میں بتا کہ وہ کس کا بیٹا ہے، کس کی اولاد ہے، یا اس کی اولاد کون ہے، یعنی اپنے رب کے رشتے بیان کر. تو وہ اپنے دین کے مطابق، جو ان کے دینی خیالات تھے اسی کے مطابق، رب کو بھی اسی تصور میں ڈھالنا چاہتے تھے جیسا کہ مختلف انبیاء سے اس دور کے جو رب کو نہ ماننے والے لوگ تھے انہوں نے سوال کیا کہ اے نبی، اے وقت کے نبی، اپنے رب کے بارے میں تو بیان کر کے تمہارا رب کیسا ہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب نمرود نے سوال کیا کہ اپنے رب کے بارے میں بیان کر کہ تمہارا رب کیسا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو اس نے اس بات کا، نمرود نے مذاق اڑانے کے لیے، کہ ایک شخص کو حکم دیا، جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دے، اور ایک شخص جس کو عمر قید تھی اس کو آزاد کر دیا، اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ دیکھو میں بھی وہ زندہ بھی کرتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں، تو اب بتا تمہارے اور میرے رب میں کیا فرق ہے. تو حضرت ابراہیم نے زبان توحیدی سے، وہ زبان معجزہ نما سے برجستہ فرمایا یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا. تو قرآن کی آیت، اگلی آیت کہتی ہے فبوہت الذی کفر، تو کافر وہاں پہ مبہوت ہو گیا، کہ کافر وہاں پہ لاجواب ہو گیا، کہ کافر وہاں پہ ساکت ہو گیا، क्योंकि उसे तौहीद रब के बारे में ऐसा जवाब मिला था कि जिसने सब काफिरों को साकित कर दिया, कि सब काफिरों को मबहूत कर दिया, कि सब काफिरों को उस मौजज़े तौहीदी में ले लिया। इसी तरह हज़रत मूसा से जब फिरौन ने सवाल किया कि अपने रब को बयान कर कि तेरा रब कैसा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ले शैइन खलकहू, मेरा रब वो हस्ती है जिसने हर शय को उसकी खिलकत अता की, सुम्मा हदा और फिर उसी की रहनुमाई और उसके लिए हिदायत का इंतज़ाम भी किया। इसी तरह जनाब रसूल खुदा के दौर में कि उस दौर में कि जिसके जिस दौर में दो बड़े आसमानी मज़ाहब के एक यहूदियत का मज़हब था कि जो हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते थे और एक मसीहियत का मज़हब था कि जो हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते थे और वो एक अल्लाह को दो में से दूसरा मानता था जो यहूदियत में से थे और एक खुदा को तीन में से तीसरा मानता था वो ईसाई यानी मसीहियत में से थे, कि तो उनकी तरफ से सवाल आ रहा था कि देखो जो आसमानी किताबें तुमसे पहले मौजूद हैं कि उनके उलमा तो कहते हैं कि रब का रिश्ते मौजूद हैं, यहूदी कहते हैं कि हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो ऐ मोहम्मद ऐ पाक मोहम्मद तू बयान कर कि तेरे रब का नसब क्या है। तो इसके जवाब में सूरह तौहीद नाजिल हुई और सूरह तौहीद का आगाज़ कुल हुवल्लाहु अहद से हुआ, तो कुल होवा के होवा ज़मीर है जो कि वो के माने में आती है कि कहो वो जो वो ज़ात जो है यानी वो ज़ात गैब मुतलक है कि वो ज़ात सबसे पोशीदा ज़ात है, वो गैब महज है कि वो ज़ात आम आँखों से दिखाई देने वाली ज़ात नहीं है, कि सारे औलादें और सारे रिश्ते कि उसकी मखलूक हैं, कि ये रिश्ते मखलूकात के दरमियान कायम होते हैं, बाप या बेटे होने का रिश्ता मखलूक होने की दलील है, खालिक होने की दलील नहीं है। इसलिए कुरान ने सूरह तौहीद नाजिल की और बयान फरमाया कि हो वल्ला हो कि वो गैब मतलक वो कौन है, क्योंकि होवा के बाद अगला लफ्ज़ अल्लाह है तो ज़ाहिरन ये ज़मीर अल्लाह से मुतल्लिक है, लेकिन चूँकि ज़मीर अपने इस्म से पहले आई है कि अपने फ़ाइल से अपने मर्जा से पहले आई है तो ये ज़मीर किस से मुतल्लिक है, तो ये ज़मीर अल्लाह ताला के गैब मुतलक होने के मुतल्लिक है कि वो हस्ती जो कि लामुतनाही है कि किसी को नज़र नहीं आ सकती, कि उसके लिए कुरान ने कोई आम सिफती नाम तो वो मुंतखब नहीं किया बल्कि उस नाम का इंतखाब किया, लफ्ज़ अल्लाह का इंतखाब किया जो कि अल्लाह का ज़ाती नाम है, जो उसकी ज़ात के बारे में है, जो उसकी ज़ात को बयान करता है, कि बाकी अल्लाह के जितने नाम हैं वो अल्लाह के सिफाती नाम हैं, अल्लाह की सिफतों को बयान करते हैं, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह का ज़ाती नाम है, अल्लाह की ज़ात को बयान करता है। क्योंकि सवाल ये था कि हकीकत तौहीद को बयान कर, ऐ अल्लाह के आखिरी नबुव्वत के दावेदार तू उस तौहीदी हकीकी को बयान कर जिसके बारे में तेरा दावा है कि वो इस कायनात की इस बशरियत के लिए हतमी और आखिरी वो पैगाम तौहीदी है, कि उस तौहीद को बयान कर, तो इसलिए लफ्ज़ अल्लाह का इंतखाब हुआ। अगरचे लफ्ज़ रहमान जो है वो भी अल्लाह से करीब तरीन अल्फाज में से है, लेकिन जितनी ज़ात का बयान वो लफ्ज़ अल्लाह में है वो लफ्ज़ रहमान में नहीं है। कुरान की बाद आयात में अल्लाह के लिए लफ्ज़ रहमान भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हतमी हकीकत तौहीदी का बयान था इसलिए लफ्ज़ अल्लाह का इंतखाब हुआ है। कुल हो वल्ला हो के कहो वो गैब मुतलक, वो गैब महज जो किसी आँख से नज़र नहीं आ सकता, कि जिसको कोई अकल इदराक नहीं कर सकती, कि जो कि ला मुतनाही ज़ात है, कि जिस ज़ात का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, जो अकलों के अंदर समा नहीं सकती, जो इंसानी अकलों से इंसानी अकलों की परवाह से बहुत बुलंद है, कि उस ज़ात का बयान हो रहा है। तो इसलिए कुरान में हुवल्ला हो अहद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यानी वो अल्लाह एक है, तो ये एक वाहद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, वाहद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि वाहद का लफ्ज अदद के लिए है। मसलन एक दो तीन इस तरह आदाद शुरू होते हैं, तो आदाद में से पहला अदद उसको वाहद कहते हैं, जबकि आहद जो है वो अदद के लिए नहीं है। कि मसलन अगर ये कहा जाए कि अरबी में कि जानी आहदन, कि मेरे पास के मा जानी आहदन, के मेरे पास कोई एक भी नहीं आया, तो इसका मतलब है कि कोई शख्स भी नहीं आया, यानी इसमें कोई एक जो है उससे सारे आदात की नफ़ी हो जाती है। और अगर कहा जाए कि मा जानी वाहिद, कि मेरे पास एक नहीं आया, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद दो आए हों या तीन आए हों और एक ना आया हो। यानी अल्लाह यानी आहद जो है वो अल्लाह की अहदियत पे दलालत करता है, अल्लाह की यकताई पे दलालत करता है, उसके अदद के ना होने पे दलालत करता है, कि वो दूसरे का पहला नहीं है, वो तीसरे का पहला नहीं है, वो चौथे का पहला नहीं है, बल्कि वो खुदाए यकता है, कि उसकी ज़ात चूँकि लामुतनाही है इसलिए कोई उसके मद्दे मुकाबिल दूसरा हो ही नहीं सकता, कि उसकी ज़ात अपनी ज़ात और सिफात में यकता है, कि अपनी ज़ात और सिफात में वो हकीकत तौहीदी का इजहार हो रहा है। इसलिए बेहतरीन अल्फाज जो कि उस ज़ुबान में मौजूद थे उनको खुदा की ज़ात वाला सिफात की हकीकत तौहीद को बयान करने के लिए मुंतखब किया गया, ताकि वो हर नस्ल इंसानी के लिए एक रहनुमाई और एक चैलेंज बने, और हर आने वाले सवाल के लिए, हर तौहीद की तहरीफ शुदा सवाल के लिए वो जवाब बन जाएं, और ता क़यामत हकीकत तौहीदी का मुकम्मल तरीन बयान बन जाएं। इसलिए कुल हो वल्ला हो अहद की आयत उतारी गई कि आखिरी ज़माने में कि ऐसी गहरी अकलों और फहम रखने वाले लोग आएंगे कि जिनकी अकलें इंतहाई गहराई में जाके हकायक को तलाश करेंगी और हकायक की तह तक पहुंचेंगी। तो उस ज़माने के लिए अल्लाह ताला ने सूरह तौहीद नाजिल की, ताकि अल्लाह ताला की वहदानियत का, अल्लाह ताला की अहदियत का बयान उसमें आ सके, कि ऐसा बयान आ सके कि जिससे कोई मखलूक के रिश्ते खालिक के साथ ना जोड़े जा सकें, कि खालिक का रिश्ता खालिसतन तौहीदी हो, खालिस तौहीद को बयान किया जाए। इसलिए इस सूरत को सूरह अखलास भी कहा जाता है, कि कुल हो वल्ला हो अहद, के कहिए ऐ रसूल कि अल्लाह एक है, अल्लाह यकता है, कि हर अकल उसके बारे में मुतहय्यर है कि अल्लाहुस्समद के, अब यहाँ पे होवस्समद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता था, अल्लाह बेनियाज है कि उसकी सिफत बेनियाजी को बयान किया जा रहा है, लेकिन होवस्समद की बजाय के वो बेनियाज है, कुरान ने अल्लाहुस्समद का लफ्ज़ का इंतखाब किया गया कि दूसरी आयत को फिर हकीकी तौहीदी की अहमियत को और वाज़े करने के लिए अल्लाह के लफ्ज़ को दोबारा दूसरी आयत में इस्तेमाल किया गया ताकि हकीकत तौहीदी की अहमियत और वाज़े हो जाए कि वो अल्लाह बेनियाज है, यानी बेनियाज इस मानी में कि किसी का हाजतमंद नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि अपनी ज़ात में बेनियाज है। तो अपनी ज़ात में जो लामुतनाही तौर पे बेनियाज हो, उसका मतलब ये होता है कि वो ना सिर्फ़ अपनी ज़ात में बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि दुनिया के हर मौजूद की जो ज़रूरत होती है, जो एहतियाज होती है, जो उसको ज़रूरियात होती हैं, उनसे वो वाकिफ भी है और उनको पूरी करने की कुदरत भी रखता है। कि ये तीनों मफहूम अल्लाहुस्समद में दाखिल हैं, उसके समद होने में इन तीनों मफहूम का दाखिल होना इस बात की ज़मानत है कि उसकी ज़ात लामुतनाही कुदरत की हामिल ज़ात है। यानी रसूल पाक अब हकीकत तौहीद को उन यहूदी और उन ईसाई उलमा के सामने बयान कर रहे हैं कि जिनका तौहीद के बारे में इनहराफी ख्यालात ये थे कि यहूदी कहते थे कि हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते थे कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और जो जाहिलियत के मुशरिकीन थे वो कहते थे के फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो इस तरह अल्लाह के मुख्तलिफ रिश्ते मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने जोड़े हुए थे, और जो बुत परस्त थे और जो पत्थरों को मानते थे, जो सूरज या चांद को मानते थे, वो जो कहते थे कि ये अल्लाह के बराबर हैं, ये अल्लाह की बराबरी करने वाले हैं, कि ये भी इलाह हैं, ये भी माबूद हैं, कि ये भी परस्तिश के काबिल है, उसी तरह जिस तरह अल्लाह परस्तिश के काबिल है, तो ये नाउज़बिल्लाह ये बुत भी, ये सूरज चांद सितारे या पत्थर या इस तरह की दूसरी चीज़ें कि जिन्हें लोगों ने अपनी जाहिलियत की बुनियाद पे अपना खुदा बना लिया था, अपना माबूद बना लिया था, तो वो ये सारे समझते थे कि जितने भी गैर तौहीदी अल्लाह को ना मानने वाले जितने ख्यालात थे, जितने मज़ाहिब थे, सब के सब ये दावा करते थे कि या तो उनके माबूद अल्लाह के साथ कोई रिश्ता रखते हैं, या उनके माबूद अल्लाह ताला की इबादत में बराबरी करते हैं। तो इन सब पे खत्ते बुतलान खेलते हुए, इन सब को बातिल कहते हुए, इन सब को गलत कहते हुए कि हकीकत तौहीद के बयान के लिए सूरह तौहीद नाजिल हुई ताकि ता क़यामत के जितने गैर तौहीदी मज़ाहिब हैं, जितने अल्लाह के मुकाबले में माबूद घड़े जाते हैं, जितने अल्लाह के मुकाबले में शिर्क और कुफ्र किया जाता है, कि उस सब को खत्ते बुतलान खींचा जाए, उस सब को बातिल साबित किया जाए। तो इसलिए ये सूरत तौहीद के कुरान के मारिफ का बयान किया जाता है कि कुरान के मारिफ का 1/3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा इस सूरत तौहीद में है। गोया कि सूरत तौहीद को पढ़ने से 1/3 कुरान का सवाब मिलता है, और 3 दफ़ा अगर सूरह तौहीद की तिलावत की जाए तो पूरे कुरान की तिलावत का सवाब मिलता है, क्योंकि सूरह तौहीद इतनी अजमत खुदावंदी के बयान पे मुश्तमिल है कि जो किसी इंसानी जहन में बग़ैर वही इलाही के नहीं आ सकता था। और जितनी पहली वही आसमानी नाजिल हुई थी वो तारीफ़ हो चुकी थी, वो भी मतालब तौहीदी के बयान से काफिर थी। इसलिए जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सूरह तौहीद नाजिल हुई कि सूरह तौहीद में वाकई तौर पे बयान किया जाए कि तौहीद की हकीकत क्या है, कि अल्लाह के बारे में अगर कुछ कहना है तो क्या कहा जाए। तो अल्लाह ने मुसलमानों को, इंसानों को वो अल्फाज अता कर दिए, यानी सूरह तौहीद अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा नेमत है कि आखिर इस इतनी बड़ी हस्ती को जो कि इस जहान की खालिक है उसको कैसे बयान किया जाए, उसको कैसे याद किया जाए, उसको कैसे अपनी दुआओं में, उसको कैसे अपने लिए खैर और बरकत के लिए उसे कैसे पुकारा जाए। तो इसलिए सूरह तौहीद नाजिल हुई कि अल्लाह को इन अल्फाज से पुकारो जो अल्लाह ने खुद अपने लिए बयान फरमाए हैं, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए बयान फरमाए हैं। वरना लोग आम अल्फाज के जो अल्लाह के बारे में होते थे, इवन हत्ता के इस्लाम में होते हुए भी उसका गलत मतलब ले लेते थे, उसके बारे में गलत बातें बयान कर देते थे। मिसाल के तौर पे 3 अहदीस हैं जो आपके सामने पेश करते हैं कि अगर के अहम एक आम फहम फिक्रात हैं लेकिन मानी के अतबार से तौहीद के खिलाफ चले जाते हैं। मसलन कुलैनी ने जमी इब्ने उमैर से रिवायत की है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से कहा कि अय्यो शैइन अल्लाहु अकबर, कि अल्लाहु अकबर क्या चीज़ है, उससे तुम क्या समझते हो। ये लफ्ज़, ये जो अल्लाहु अकबर है, कि अल्लाह बहुत बड़ा है, इससे तुम क्या समझते हो। तो शख्स ने जवाब दिया कि इससे मैं समझता हूँ अल्लाहु अकबरो मिन कुल्ले शै, कि अल्लाह हर चीज़ से बड़ा है। कि उसने समझा कि मैं आम फहम ज़ुबान में ये बात जो बयान कर रहा हूँ ये बड़ी आसान है, कि जिसका सवाल इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम ने मुझसे किया है तो आपने फरमाया वकाना सुम्मा शैन अकबरो मिनो, कि क्या कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो कि अल्लाह से बड़ी हो। तो मैंने जवाब दिया, मैं हैरान हो गया कि ऐसी चीज़ तो हो ही नहीं सकती जो अल्लाह से बड़ी हो, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि अल्लाह अकबर का मतलब ये है कि अल्लाह वो हर चीज़ से बड़ा है। तो मैंने कहा कि आप इस बारे में क्या फरमाते हैं, वमा हुआ, फिर वो ज़ात क्या है, फिर अल्लाह अकबर का क्या मतलब है जो हम बयान करें। तो हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अकबर हो मिनन यूसुफ़ो, अल्लाह अकबर का मतलब ये है कि उसका वासफ बयान नहीं किया जा सकता, यानी वो इतनी बड़ी ज़ात है, इतनी अजीम ज़ात है कि उसकी सिफत बयान नहीं की जा सकती, उसकी ज़ात के लिए सिफत का बयान करना नामुमकिन है। वो ज़ात अपनी सिफत के बयान से भी बहुत ज़्यादा बुलंद है, कि ये मतलब है अल्लाह अकबर का, यानी नफ़ी सिफत, नफ़ी वस्फ मुराद है, कि वस्फ बयान करना मुराद नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की सिफत बयान नहीं की जा रही, अल्लाह का सिफत, बल्कि अल्लाह अकबर का मतलब है कि उसकी ज़ात से हर सिफत की नफ़ी की जा रही है, क्योंकि हर सिफत अल्लाह ताला के यहाँ ऐन ज़ात है, और अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जस्तजू करने से, उसकी गहराई में जस्तजू करने से मना फरमाया गया है, कि सिर्फ़ उसकी वो सिफात वो असमाए हुसना जो बयान किए गए हैं उनके ज़िक्र का हुक्म दिया गया है और उनके बारे में गौर व फिक्र के करने को कहा गया है, उसकी ज़ात के बारे में गौर व फिक्र, वो मंतक़ ममनुआ है, वो इलाक़ ममनुआ है, उसमें दखालत ममनुआ है, उसकी ज़ात की दखालत ममनुआ है, उसके वो सिफतें जो उसकी ऐन ज़ात हैं उसके वो भी मंतक़ ममनुआ हैं, इलाक़ ममनुआ हैं, अलबत्ता सिर्फ वो सिफात जो उसकी रबूबियत से मुतल्लिक हैं, जो उसकी खालकियत से मुतल्लिक हैं, मसलन अल्लाह नूरुस्समावात वल अर्ज़ के अल्लाह आसमानों और ज़मीनों का नूर हिदायत है, तो इन सिफात का बयान, इन सिफात को बयान करने को कहा गया है कि जिन सिफात को कुरान में या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि उन्हीं सिफात को बयान करने को कहा गया है। कि मिसाल के तौर पे कि कुछ मानी कुछ सिफतें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ फजीलत ज़ाहिर करने के लिए आती हैं, या कुछ सिफतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ किसी बात की ताज़ीन के लिए आती हैं। अल्लाहु अकबर में अकबर ऐसी सिफत नहीं है कि वो फजीलत बयान करने के लिए आई हो या वो सिर्फ ताज़ीन के लिए आई हो, बल्कि वो नफ़ी वस्फ़ के माना में है। इसी तरह एक दूसरी रिवायत जो कि मिलती जुलती है कि कुलैनी ने इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि एक शख्स ने कहा अल्लाहु अकबर, तो हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाहु अकबर मिन अय्युश है, कि अल्लाह बड़ा है तो किस चीज़ से बड़ा है, तो उसने कहा मिन कुल शय, अल्लाह हर चीज़ से बड़ा है। तो फरमाया हद्दत्ता हूँ, तुमने तो अल्लाह की हद बयान कर दी। इस तरह अगर उसे दूसरी चीज़ों से मुकाबले में बड़ा कहा जाए तो वो अल्लाह को महदूद करने के मुतरादिफ है। यानी अल्लाह अकबर का मतलब यह है कि अल्लाह के लिए कोई सिफत भी बयान नहीं की जा सकती, उसकी ज़ात की कोई सिफत वस्फ नहीं बयान किया जा सकता कि अल्लाह इस बात से भी बड़ा है, कि ये मुराद है अल्लाह अकबर से। वरना अगर कहा जाए कि अल्लाह फलां चीज़ से बड़ा है या अल्लाह फलां चीज़ से बड़ा है या अल्लाह सारे जहान से बड़ा है, तो सारे जहान की भी एक हद है कि यानी उस हद से थोड़ा सा अल्लाह बड़ा है, तो अल्लाह की ज़ात महदूद हो जाएगी नाउज़ुबिल्लाह। इसको इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम का बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह को महदूद करना नहीं है। फिर तो उसने कहा शख्स ने कैफा अकूल, तो फिर मैं क्या कहूँ या आप क्या कहेंगे, तो फरमाया कुल, तुम इस तरह कहो अल्लाहु अकबर मिन यूसुफ, कि अल्लाह बड़ा है कि उसकी सिफत बयान नहीं की जा सकती, कि उसका वस्फ बयान नहीं किया जा सकता, कि उसकी ज़ात का वो वस्फ बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसकी वो सिफात बयान की जा सकती हैं जो उसकी मकाम रबूबियत और मकाम खालकियत में है, कि जिनको कुरान ने या रसूल खुदा ने अल्लाह ताला के बारे में बयान फरमाया है। और तीसरी एक रिवायत है कि उसमें कहा गया कि अल्लाह अकबर व मिन खल्क ही, कि अल्लाह अकबर अल्लाह अपनी खलकत में अकबर है, यानी उसका वस्फ बयान नहीं की जा सकता। अल्लाह अकबर व मिम्मा अखाफ हो व अहज़र हो वह, तो अल्लाह जो है वो पहली दो रिवायतों को वो साहिब वसाइल ने कराहत पे वो उसको हमल किया है और तीसरी रिवायत को जवाज पे हमल किया है, लेकिन ये कराहत और जवाज का मसला नहीं है, बल्कि पहली दो रिवायत वो एक दलील तौहीद को बयान करती हैं, एक बुरहान को बयान करती हैं, जो है ना कि वो मसलन अल्लाह ताला अपने जलवों की वजह से दुनिया में ज़हूर पज़ीर है, कि उसके जलवे इस दुनिया में ज़ाहिर हैं, कि उसकी तजल्लियाँ इस दुनिया में ज़ाहिर हैं, कि उसकी निशानियाँ उसकी आयात इस दुनिया में ज़ाहिर हैं, कि उसकी निशानियाँ اور اس کی تجلیاں کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ کی اوپر تجلی کی، کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم نے مطالبہ کیا کہ اے اللہ ہمیں اپنا آپ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر تجلی کی، یعنی اس کا جلوہ نمودار ہوا۔ تو اللہ کا صرف جلوہ دیکھا جا سکتا ہے، وہ تجلی جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو کہ نظارے میں آ سکتی ہے یا جس کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی تاب بھی دیکھنے والے نہیں لا سکتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کا وہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، ان کا شہود کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عام آنکھوں سے دیکھنے سے بہت بلند ہے کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، لیکن دل کی آنکھیں اسے محسوس کر سکتی ہیں کہ وہ ذات وہ ہے۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام وہ ایک دعا میں فرماتے ہیں کہ لقا یا الہی وحدانیت العدد، کہ عدد کی جو وحدانیت ہے، عدد کا جو یکتا ہونا ہے، وہ تیرے ساتھ مخصوص ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اعداد میں سے پہلا عدد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو قل ہو اللہ احد سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ذات ہے جو کہ یکتا ہے۔ اور وہ دوسری ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ واحد لا بے عدد، کہ اللہ ایک تو ہے لیکن عدد کے طور پہ ایک نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ذات میں لا متناہی ہے، اپنی ذات میں کوئی کف نہیں رکھتا، کوئی برابری کرنے والا نہیں رکھتا، اس لیے وہ یکتا ہے، وہ بے مثال ہے، اس لیے اس کو وہ احد کہا گیا ہے۔ اور جو آخری آیت میں احد استعمال ہوا ہے وہ عمومیت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس کا معنی علیحدہ ہے، اور جو پہلی آیت میں لفظ احد استعمال ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وہ احدیت کے معنوں میں ہے، کہ جو کہ عدد کے مقابلے میں ہے، جو اس کی ذات کی لا متناہی اور اس کے غیب مطلق ہونے کے بارے میں ہے، کہ وہ علیحدہ معنی میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات و صفات ہوتی ہیں وہ عام ذات و صفات سے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اگر کوئی چیز پہلی ہو تو وہ آخری نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی چیز ظاہر ہو تو وہ چھپی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہو الاول والآخر، کہ وہ سب سے پہلا بھی ہے اور سب سے آخر بھی ہے، یعنی اس کے لیے صفات جو ہیں عین اس کی ذات ہیں، کہ وہ صفات جو کہ مخلوقات کے لیے ممکن نہیں ہیں اس کی ذات کے لیے وہ ممکن ہیں۔ وہ ظاہر ہو اور وہ ظاہر بھی ہے اپنی آیات سے، اپنی نشانیوں سے، اپنی تجلیوں سے، اپنے جلووں سے، والباطن ہوں اور وہ مخفی بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے، یعنی عین اسی وقت جبکہ وہ ظاہر ہے عین اسی وقت وہ پوشیدہ بھی ہے، اور وہ ہماری رگ سے زیادہ وہ قریب بھی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی یہ جو قرب بیان کیا گیا ہے یہ قرب مادی طور پہ قریب ہونا بیان نہیں کیا گیا، بلکہ معنوی طور پہ اس ذات کا انسان سے قریب ہونا بیان کیا گیا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔